ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरये मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 26वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 37। एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्र शस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवा धर्मवर्तिनो ये केचित् इहोदिता अनुदिता च अवनिपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इहा तु पुनर्भवे ते उभय शेषाभ्याम निविशन्ति। शब्दानुवाद एवं विधा इस प्रकार के नरकाः अनेक नरक यमालये यमराज जी के लोक में संति हैं। ऐसा नहीं कि थे और अभी नहीं है वो हमेशा रहेंगे हैं। प्रेजेंट टेंस का यहां प्रयोग है। शतशः सैकड़ों सहस्रशः हजारों तेषु उन लोकों में सर्वेषु सब में च भी सर्वे सभी एव निस्संदेह अधर्म वर्तिनः पुरुष जो वैदिक नियमों या विधि विधानों का पालन नहीं करते ये केचित जो भी यह यहां उदितः वर्णित माने कहा गया है अनुदिता जिसका वर्णन नहीं हुआ है मतलब इतने नरक है थोड़े बहुत वर्णन कर दिए, बोले मैंने कुछ किया और कुछ नहीं किया। च तथा अवनिपते हे राजन, माने परीक्षित महाराज, तथा तथा एव उसी प्रकार धर्म अनुवर्तिनः जो पवित्र हैं और वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं, इतरत्र अन्यत्र यह श्लोक में तू लेकिन पुनः भवे दूसरे जन्म में ते वे सब उभय शेषाभ्याम पुण्यों अथवा पापों के फल के शेष भाग से निविशन्ति प्रवेश करते हैं। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों और हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहां पर उल्लेख नहीं भी हुआ है, वे सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे, किंतु जो पुण्यात्मा है वे अन्य लोगों में अर्थात देवताओं के लोक में जाते हैं। तू भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तात्पर्य, इसी वर्णन से भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र नमोयति। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी विभिन्न लोकों में एक देह से दूसरे में परिवर्तित होने के लिए आया है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतगुण लोक उच्च लोक में जाते हैं। अधोगच्छन्ति तामसाः, इसी प्रकार जो तामसी हैं वे नरक लोक में प्रवेश करते हैं। किंतु ये दोनों प्रकार के प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि पवित्र आत्मा भी स्वर्ग लोक में सुख भोग के पश्चात पृथ्वी लोक पर लौटते हैं। अतः एक लोक से दूसरे में गमन करने से जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो जाता, वे तो तभी हल हो सकती है जब हमें यह भौतिक देह फिर धारण करना न पड़े। ऐसा तभी संभव है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यही जीवन की सिद्धि है और जीवन की समस्याओं का सही हल है। हमें न तो उच्च लोक में जाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, न ही ऐसा कर्म करना चाहिए कि नरक में जाना पड़े। ऐसे भौतिक जगत का पूर्ण उद्देश्य तभी प्राप्त होगा जब हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जा सकें। ऐसा करने का सरलतम उपाय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम ब्रज। मनुष्य को न तो पवित्र न ही अपवित्र होना चाहिए, न पवित्र होना चाहिए तो क्या होना चाहिए ना खाना चाहिए ना उपवास रहना चाहिए तो क्या करोगे न पवित्र होना चाहिए न अपवित्र होना चाहिए, इसको याद रखिए, बाद में चर्चा करेंगे। उसे भक्त होना चाहिए, उससे तो भक्त होना चाहिए, और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। समर्पण की विधि भी सरल है, इसे एक बालक भी कर सकता है। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कीर्तन करते हुए करे। मनुष्य को चाहे कि श्री कृष्ण का भक्त बने, उनका उनकी आराधना करे, उन्हें नमस्कार करे। इसी प्रकार से अपने जीवन के समस्त कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन? आए हुए सभी भक्तों का हम सादर स्वागत करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कोई नरक ना जाए। ये पंचम स्कंध में भूगोल और खगोल, भूगोल माने इसी भूगोल जो पृथ्वी है, गोलाकृति पृथ्वी, इसका वर्णन विस्तार भाव से किया गया है। ये धरती कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची, कितनी नीची, ये धरती हम, ये विश्व जो है ये कितना बड़ा है, इसका मीटर फीटर सब दिया गया। पीछे आपने सुना है कितनी लंबी चौड़ी है धरती, ये पृथ्वी विश्व 50 करोड़ योजन इसका ये डायमीटर जो है ये, हाँ, इतना लंबा चौड़ा ये विश्व है। उसमें हमारी ये धरती है, उसमें जम्बू द्वीप है, उसमें 9 वर्ष है, बहुत कुछ वर्णन आपने सुन लिया। भूगोल और खगोल, ये भूगोल है, खगोल माने, ख माने आकाश, आकाश में जितने गोल गोल घूम रहे हैं ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये निहारिका, छायापथ, ये धूमकेतु, अनेक अनेक, जब हम अंधेरे, वो अंधेरे के आकाश में, अंतरिक्ष में हम दृष्टिपात करते हैं, अनेक अनेक टिमटिमाते ताराएं हमारे नजरों में, हमारे दृष्टिपथ में आ जाते हैं। वो क्या है? अनेक अनेक ग्रह है, अनेक अनेक नक्षत्र हैं, और बड़े बड़े छायापथ भी है जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। इस सूर्य से भी बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े ग्रह है इस अंतरिक्ष में, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण हमको छोटे छोटे लगते हैं, इतने इतने छोटे लगते हैं। व्यक्ति जितना दूर चला जाएगा तो उतना छोटा दिखता है। जब हवाई में आप यात्रा करते हैं तो कितना छोटा छोटा लगने लगता है। सो भूगोल माने यहां का जो वातावरण, यहां की स्थिति, और खगोल माने अंतरिक्ष की स्थिति है। ये सारा वर्णन करने के बाद अंतिम सीढ़ी में, अंतिम सोपान पे सुखदेव गोस्वामी पहुंचकर नरकों का वर्णन करते हैं। ये भी भगवान के शरीर में है, विराट पुरुष की जो कल्पना की गई है, ये नरक लोक भी भगवान में ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नरक का ध्यान करने से भगवान का ध्यान नहीं होगा, नरक का ध्यान करने पर भी भगवान का ध्यान होगा, अन्यथा भागवत में इसका स्थान ना होता। द्वितीय स्कंद भागवत में कहा गया है, पाताल मितस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। ये रसातल, पाताल है ना, तल, अतल, वितल, तलातल, तल, अतल, बीतल, तल, तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये जितने लोग हैं, और उसके नीचे ये है, ये नरक लोग हैं। इसमें सुखदेव गोस्वामी, आपने सुना होगा, 28 नरकों का वर्णन किया है। 28 नरकों के वर्णन करने के उपरांत ये श्लोक मुझे लगता है कि अंतिम श्लोक है, बाकी इसमें 38 हैं, 39 और 40, बस ये थोड़ा बहुत कुछ, हाँ बस कंक्लूशन है ये, इतने बात खत्म हो जाएगा, ये पंचम स्कंद समाप्त हो जाएगा, ये वाला श्लोक जो है ये खत्म करते हैं यहाँ। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार, इस प्रकार से माने खत्म, एवं विधा, बस इतने ही। ये तो 28 नरकों का हमने वर्णन किया, पर ऐसे ही सैकड़ों और हजारों नरक है जिनका हमने वर्णन नहीं किया। बोले वहां पे रहने वाले जो रेजिडेंस हैं वो क्या करके गए, बहुत कुछ बढ़िया कर्म करके गए हैं या क्या करके गए हैं? बोले जितने पापी पुरुष है उन सबको इकट्ठा उसमें भर दिया गया है। हमारे भी धरती में भी ऐसा होता है, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप देखेंगे ब्राह्मण शासन अलग है, नहीं है शहरों में भी देखो, वीआईपी लेन अलग है, सदर बाजार अलग है, वो पापड़ी चौराहा अलग है, अलग 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 जगह में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ब्राह्मण शासन अलग है, ठाकुरों का अलग है, यादवों का अलग है नहीं, चतुर्थ वर्णों का अलग है, अब कोई किसी से नहीं मिलता। इसी प्रकार जितने पापी है, जिन्होंने खूब पाप किया है, चोरी, बदमाशी, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, कपट, उन सबको भगवान ने एक जगह में भेजा। बोले ठीक है वहीं जाकर रहो, तुम ज्यादा दुष्टता फैलाओगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो उनको वहां भेजे सैकड़ों सहस्र हजारों। अच्छा उसका एक मीटर दिए कितने पापी, बोले एक मोटी मोटी बात कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते पाप की बात तो छोड़ो, नॉर्मली भी बात यदि कोई व्यक्ति देखेगा, इसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पंचम स्कंद के अंतिम में, हम आपको सुनाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बोले राजन ये जो नरक हैं इसमें वो ही लोग जाएंगे पापी लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही हैं, यस्तु है वह एतद अहमिति ममेदमिति भूतद्रोहिण केवलम स्वकुटुंबम एव अनुदीनम प्रपुष्णति स तदिह विहाय स्वयमेव तद अशुभेन रौरवे निपतति। ये मानदंड से हम विचार कर सकते हैं कौन जाएगा। बोले यह अस्तु यह वह एतद अहमिति ममेदमिति भूतद्रोहिण, बोले जो कोई पारिवारिक व्यक्ति ये कहेगा कि ये परिवार मेरा है और ये दूसरे का है, बाकी पाप पुण्य की बात छोड़ दीजिए, झूठ फूट बोलना वो छोड़ दीजिए, हाँ कोई कहेगा कि एतद अहम मैं ये हूं ये मेरा है ना, भूतद्रोहिण, ये भावनाओं को लेकर के दूसरी जीवात्माओं से द्रोह करेगा, उसको उसको खाना बना नहीं देगा, छीना झपटी करेगा, केवलम स्वकुटुंबम एवं अनुदिनम प्रपुष्णाति, केवल इसी भावना के साथ अपने घर गृहस्थी का पालन कर रहा है अथवा अपना कुटुंब का निर्वाह कर रहा है, बोले उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। पाप पुण्य की बात तो बहुत दूर की बात है, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे इतने आंधी आई कि पत्थर उड़ने लगे, 5 किलो के पत्थर उड़ने लगे, भाई 5 किलो के पत्थर जब उड़ रहे हैं तो ये दरियां यहां बिछी रहेंगी नहीं रहेंगी ना, अब पत्ते फतों को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछेगा, 5 किलो पत्थर उड़ रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं जो इस प्रकार से केवल अपने कुटुंब एवं अनुदिनम डे बाई डे दिन पर दिन प्रपुष्णाति, प्रपुष्णाति शब्द का अर्थ होता है बढ़िया से पालन करता है, अपनी पत्नी को लेकर के बनारसी कांजीवरम साड़ी देगा, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया जींस खरीद करके लाएगा, अब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको नंगा रखना है, देना भी है लेकिन केवल उन्हीं के पीछे रहने से प्रपुष्णाति सा, वो व्यक्ति वो जो बढ़िया करके कह रहे हमारे से श्रेष्ठ कौन हो सकता है, स तद यह वो व्यक्ति वो सारे धन को अपनी पत्नी को अपने बच्चों को, यह मैंने इस धरती में जिस घर में रहता था उसी घर में बिहाय छोड़ना पड़ेगा, बिहाय छोड़ के स्वयं एव, क्योंकि अकेले इस जिम्मेदारी उठाई है, बीड़ा उठाया है, तत् अशुभ है ना, जो अशुभ कर्म किया है रौरव निपत्ति, रौरव में जाएगा। और क्या सुनना चाहते हो? हैं? बिल्कुल पहला वाला है, पंचम स्कंद के 26वें अध्याय का, जब सुखदेव गोस्वामी रौरव वर्ण ये नरक वर्णन का श्री गणेश करते हैं, पहला नरक वर्णन करते हैं। पहला वाला तद अशुभेन स्वयमेव रौरवे निपत्ति, रौरव में जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं, कोई को मीटर देता है ना भाई, इस मीटर पे अगर व्यक्ति रौरव में जाता है तो फिर चोरी करने वाला, बदमाशी करने वाला, झूठ बोलने वाला, धन अपहरण करने वाला, दूसरे के घर में आग लगाने वाला, ये कहां जाएंगे? फिर इतना भारी भारी वर्णन की क्या आवश्यकता है, सब सब जानने वालों को इशारा ही काफी है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी 28 नरक और सैकड़ों नरकों का वर्णन करते हैं, इंगित करते हैं। राजन वहां जाएगा, यमालय संति सहस्रस सर्वेषु च सर्व एवा धर्म वर्तिनः अधर्म वर्तिनः। बोले जो अर्ध अधर्म में वर्तमान होंगे, अधर्म किससे कहते हैं, किसको आप धर्म कहोगे किसको अधर्म कहोगे, हाँ धर्म कौन कौन हाथ उठाएगा, बोलो धर्म क्या है, हाँ बोलो बोलो माताओं बोलो धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदु, क्या है? बोले धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रणयन किया हुआ संविधान है, विधा है, विधान है, साक्षात भगवत प्रणीतम। मानव समाज का धर्म अलग है, देवताओं के समाज का धर्म अलग है, किन्नरों का धर्म अलग है, किम पुरुष का धर्म अलग है, सब अलग 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 संप्रदाय, अलग 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 धर्म, लेकिन किसने बनाया, साक्षात भगवान प्रणीतम। क्या प्रमाण है, कहां है ये धर्म, वेदो नारायण साक्षात। बोले वेद साक्षात नारायण है, वेद ने जो कहा है, जो प्रणयन किया है, तत् धर्म अधर्मस्तद विवर्ज्य। विष्णु दूतों ने कहा वेदों में जो विधा है उसी को कहेंगे धर्म, वेदों में जो विधा नहीं है उसको कहेंगे अधर्म। हम मनमाने ढंग से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए यहां श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो अधर्म अनुवर्ती नहा है, जो अधर्म करते हैं वो यहां जाएंगे। अर्थात निष्कर्ष यही है कि जो लोग वेदपथ का उल्लंघन करते हैं निश्चित रूप से उनको नरक जाना पड़ेगा, और जो लोग वेदमार्गी हैं वेदपथ का अनुगमन करते हैं कहां जाएंगे, धर्मानुवर्तिनः इतरत्र। अत्र माने यहां से इत उद, यहां से उधर जाएंगे, परलोक में जब जाएंगे कहां जाएंगे, बोले स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य कर्माओं के लिए स्वर्ग और अधर्म पाप कर्माओं के लिए नरक है। प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा हिंट से किया है, अधो गच्छन्ति तामसाः, बोले तमगुणों में रहने वाले अध नीचे जाएंगे, और ऊपर कौन जाएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ते सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ते राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थो अधोगच्छन्ते तामसाः। बोले सत्वगुणावलंबी व्यक्ति ऊर्ध्वलोक में जाएगा, और रजगुणावलंबी व्यक्ति इस लोक में रहेगा, और तमोगुणावलंबी व्यक्ति नीच लोक में जाएगा। पर प्रभुपाद जी का ये आग्रह है ना तो हमको उधर जाना है ना तो हमको इधर, नारायण परासर्वे ना कुतश्चन विभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। आपने जब ये सुना अनुवाद, चाहे पुण्य कर्मा लोक में जाओ चाहे पाप लोक में जाओ, पर आना कहां पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। इसलिए पापी को दुखी होना नहीं चाहिए, पुण्य कर्मा को मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्यों, दो दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अरे भाई आप स्वर्ग में जाते हो अमृत पीते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी भूलो मत, इंद्र को ऐसा भगाया असुरों ने जाकर के उनको भोजन नहीं मिली। मान सरोवर में 1000 वर्षों तक कमल के डंठल के अंदर छुपा बैठा, तुम किस खेत की मूली हो। यदि स्वर्ग का राजा इंद्र को ऐसा भागना पड़ता है, हमारी क्या स्थिति है। और नरक में तभी कोई चिंता नहीं है, थोड़े दिन बस भोग भाग करके यहां फिर आना पड़ेगा। धरती इस संसार में सब कुछ चलता रहता है, चला प्राणः, चला लक्ष्मी, चला चलित यौवनः, चला चलित संसारे, धर्म एको ही निश्चल शुभाषितानि। केवल धर्म है, भगवान की भक्ति है। धर्म क्या है? वाकई धर्म का अर्थ होता है भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति को ही असली धर्म कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहां कहा, ना तो हमको पापी बनना है, ना तो हमको पुण्यकर्मा बनना है, तो क्या बनना है? भक्त बनना है। इसका भीतरी अर्थ क्या है? इसका भीतरी अर्थ है ये कि हमको पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, अथवा अच्छा गुण जगा करके संसार में नाम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ना, अथवा बुरे कर्म करके नरक जाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए ना। व्यक्ति में क्वालिटी यही है कि अपनी स्थिति से वो ऊपर उठने का प्रयास करे। आप देखेंगे पशु और मनुष्य में यही अंतर है। आपने जो श्लोक पढ़ा है वो क्या है, वो आहार निद्रा, वो उससे थोड़ा हटके आप विचार करो। ये पशु केवल अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। परंपरा का निर्वहन माने खाते हैं पीते हैं। वो गीदड़ वही बिल बनाता है और गीदड़ का बच्चा भी वही बिल बनाएगा। लेकिन इंसान में एक ऐसी विशेषता है, क्या विशेषता है? वो पूछेगा कि मेरे में, मुझ में क्या विशेषता है, क्या पशु जैसा मैं बनना चाहता हूं या मैं कुछ विशेष बन सकता हूं, मेरे में कुछ और संभावना है। और उस संभावना की खोज करता है तो अंततः पाता है कि मनुष्य, ना 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 ना, हमको पशु नहीं बनना चाहिए, हमको मनुष्य नहीं बनना चाहिए, हमको देवता नहीं बनना चाहिए, हमको क्या बनना चाहिए, हमको गोलक के निवासी बनना चाहिए। ना भगवान पुरुष है, ना भगवान स्त्री है, ना भगवान पशु है, ना भगवान पक्षी है, ना भगवान देव दानव दनुज कुछ भी नहीं है। भगवान क्या है? बोले भगवान भगवान ही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। हम उनके अंश है इसलिए हम भी वही है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों को काटना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आप देखेंगे ये नरक सरग जब वर्णन होता है, मेरे ख्याल में ईशोपनिषद, ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र है। क्या है मंत्र? ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र, थर्ड हिम है, किसको याद? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। पढ़िए, नहीं शुरू से पढ़िए। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। सीधा सीधा अर्थ है, असूर्या नाम ते लोका, जहां सूर्य के रोशनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, उन लोगों को कहते हैं अंधेन तमसावृता, घनघोर अंधकार है। ताम स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, प्रत्यमाने मरने के बाद, ये के चात्म हनोजना, जो आत्महत्या करते हैं। उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, द ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर हार्ड वर्क, कठोर श्रम करके जन्म मृत्यु की बेड़ी को काटना, इसी के लिए मनुष्य जीवन है। आप देखिए वहां पर प्रभुपाद जी ने देवासुर का विभेद, अंतर किसी ऐसे दैवी गुण से नहीं किया है ना। प्लीज आप घर जाके देख लेना, जैसा भगवत गीता में दैवासुर संपद लिखा हुआ है, ये दैवी गुण है, ये असुरी गुण है ना, वहां पर प्रभुपाद जी ने एक बात लिखी है कि जो लोग ढीले ढाले हैं आध्यात्मिक जागृति करने के लिए, बहुत ज्यादा उत्साही नहीं है, वो असुर है। ये विशेष बात है। और जो लोग अध्यात्म जागृति के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं वो लोग देवता है, और वो आत्महत्या नहीं करते, नहीं तो आत्महत्यारे जितने वो वहां जाएंगे। किस लोक में जाएंगे? उस नरक लोक में जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको लगता है कि बहुत दूर की बात है, वो हो तल तल बीतल सुतल, किसने देखा, कहां देखा, और वाकई ऐसा लगता है कि जो नजरों में है तो वो ही सामने कुछ आता है, बाकी लोग उतना ध्यान नहीं देते। इसका एक सुंदर समाधान कपिल भगवान ने अपनी माता जी के पास किया है। कपिल भगवान ने माता को समझाया, मां नरक लोग हैं 99,000 योजन, आपको जाना पड़ेगा, गरम गरम बालू है, यमदूत पीछे कोड़े मारते मारते लेंगे, प्यास लगे पानी की एक बूंद नहीं देंगे, बिस्लरी पानी तो दूर की बात है, प्यास खूब लगेगी, आप पानी मांगोगे पानी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। इसी संसार में भी आपने सुना होगा, शाहजहां को औरंगजेब ने पानी नहीं दिया था, बिना पानी के लिए मजबूर किया, तुमने ये प्रासाद बनाया है इसके भीतर तुमको बिना पानी का मरना पड़ेगा। शाहजहां ने कहा, बेवकूफ, हिंदू लोग तो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, तू नालायक, जीते जी अपने बाप को पानी नहीं देता। यही है हमारे सनातन संस्कृति की ग्लोरी है, ये मरने के बाद भी पितर लोगों को पानी जल तर्पण किया जाता है, लेकिन ये नालायक जीते जी भी अपने बाप को पानी नहीं देते। तो कपिल भगवान ने कहा, माताजी अत्रैव नरका स्वर्गा, हे मां यहां पे नरक और स्वर्ग उपलक्षित है। मां जिस नरक का हमने वर्णन किया, मान लीजिए आगे चल के नास्तिक लोग आएंगे वो विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग तो भक्त लोग और शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम लोगों की बुद्धि में थोड़ी सी भगवान की कृपा है, हम विश्वास करते हैं, विश्वास जानते हैं, हाँ जैसे ये तारा नक्षत्र पृथ्वी देख रहे हो ऐसे ही नरक लोक है, इसमें कोई अविश्वास करने की बात नहीं। पर कुछ मूढ़ बुद्धि वाले धूर्त लोग होंगे जो इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कपिल भगवान कहते हैं, मां अत्रैव नरकः स्वर्गः, यहां पर नरक और स्वर्ग ये दिखाई देता है। हम आपको श्लोक बताते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्गः, तृतीय स्कंध के 32वें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय का ये 29वां श्लोक है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मात प्रचक्षते, हे मां यहां पर नरक है यहीं पर स्वर्ग है। या यातना भी नारक्या, हे मां जिस नरक यातनाओं का हमने वर्णन किया है, या यातना भी नारक्या स्ता यहां भी उपलक्षिता, बोले वो नरक यातना वो नारकीय कष्ट अत्र यहां भी उपलक्षिता, यहां भी दिखाई पड़ता है, साफ साफ है। अगर वहां पे देखना नहीं चाहते हो यहां देखो, आपके अलग आपको लगता है कि ये नरक यातना जो भगवान कपिल ने कहा ये झूठ कहा है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मात्र प्रचक्षते, कहां ये नरक स्वर्ग है, कहां है, कहां है, दक्षिण दिशा में है। अरे कपिल भगवान कहते यही है मां, वो वाले नरक को छोड़ो, तुम सो गए थे क्या, वो वाले नरक को छोड़ो, वो कहते मां यहां है, यहां अत्रैव, अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, तत्र माने सर्वत्र माने सब जगह है, हाँ अत्र तत्र जत्र माने जहां, ठीक है ना। तो अत्र तत्र सर्वत्र, ये सब संस्कृत के शब्द है, तो अत्र माने यहां, तो कहते हैं यहां नरक है, यो यातना वहां है, वो यातना यहां भी है। कहां है हम आपसे पूछते हैं। अरे भाई कपिल भगवान कहते हैं यहां है, परिवार में है, और कहां है, कहां है, कहां है, घर पे हैं, उधर में है, पेट में। भाई अत्र माने यह माने वाकई आदि शंकराचार्य भगवान से पूछा गया कोबा नरक कहा। हां स्वदेहम अपना देह ही नरक है। आप इतना सारा दुनिया घूमते हो, दक्षिण में है कोई कहेगा, उत्तर में है कोई कहेगा, फिलीपींस में, नहीं नहीं फिलीपींस में नहीं है, वो तो जनार्दन महाराज वहां के, कोई कहेगा वहां से है, कोई कहेगा अमेरिका से है। अरे भाई कहीं नहीं है, कहां है नरक, नरक स्वदेहम अपना शरीर ही नरक है। क्या प्रमाण है, अस्थि स्तंभम स्नायु बद्धम, बोले हार्ड का ये अंजर पंजर है, अस्थि स्तंभम स्नायु बद्धम मांस सोणित लेपितम, बोले इसमें मांस और सोणित माने खून, ये हड्डी के अंजर पंजर के ऊपर उसमें मांस को थपा दिया गया है, और मांस थोड़ा सूखा हो जाएगा उसको गीला बनाने के लिए उसमें खून का रस मिला दिया गया। मांस सोणित लेपितम चरमावनधम, बोले रहे कैसे, टीके कैसे, तो भगवान ने के छिलका पैदा किया। आप देखो बादाम इतनी कीमती चीज है, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया छिलका है, वो छिलका कीटाणु विरोधी होता है, इसलिए बादाम जरूर खाना पर उसका छिलका मत खाना, वो तुम्हारे पेट में जाएगा। अगर बादाम जाता है तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पर उसका छिलका जाएगा पाचन शक्ति को खत्म कर देगा। हाँ नहीं खाना, उसको भिगा करके खा लेना। तो भगवान ने हर हर वस्तु के ऊपर छिलका बनाया, तो भगवान ने जब इसको बनाया इसके ऊपर भी एक छिलका बनाया, वो देखो छिलका यही है, ये चमड़ा है। चरमावनधम और क्या किया, पात्रम, बोला इसमें एक पात्र बनाया, इस पात्र को अंजर पंजर के भीतर रखा, और रख करके उसके ऊपर एक स्किन, एक छिलका, एक चर्म त्वचा दे दिया। लेकिन जो पात्र है उसके भीतर क्या माल मसाला है, बोले पात्रम मूत्र पुरुषयो हो, बोले उसमें केवल मूत्र और पुरुष, संस्कृत में पुरुष कहते हैं जो आप बाथरूम में करते हो उसको पुरुष कहते हैं, मल को पुरुष कहते हैं, मल मूत्र का थैला बनाया। देखो अस्थि स्तंभम स्नायु बद्धम मांस सोणित लेपितम चर्मावनधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरिशयो जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिरम आतुरम। बोले इतना नहीं, चलो डब्बे डुबे बना दिया कोई अच्छा होता ना, इसका भविष्य लिख दिया। बोले जरा आएगा शोक आएगा, जरा शोक विपाकार्तम, बोले व्यक्ति को हमेशा आर्त, हमेशा उसको विपत्ति सताएगी, कभी भूकंप, कभी आग, कभी ठंड, कभी गर्मी। अभी देखो अब 0 डिग्री में आप ठिठुरते हो, ठीक एक महीने के बाद देखो 50 डिग्री में आपका दिल कांपेगा। कभी 50 डिग्री तो कभी 5 डिग्री है। जरा अशोक विपाकार्तम रोग मंदिरम आतुरम, तरह तरह का रोग है, और यहां तक शास्त्र में कहा गया रोग मंदिरम, जैसे मंदिर में देवालय में देवता होता है, बोले इस आलय में क्या है, बोले यहां का देवता है रोग, रोग मंदिरम जनासुख दूरधरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम, बोले इसको धारण करना भी भारी मुश्किल है। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, अरे भाई ठंडी तुम बहुत दूर तक सोचते हो, नजदीक से सोचा करो। इसको धारण करना मुश्किल कि दो चपाती इसके भीतर नहीं जाएगी तो ये जीवित नहीं रहेगा। दो चपाती के लिए तुमको नाक रगड़ना पड़ता है, वो ढकेल चलाना पड़ता है, वो टमटम चलाना पड़ता है, दूर धर्म इसको धारण करना भी मुश्किल, तभी इसको बचाव के लिए मकान बनाना पड़ता है, मकान में भी खटमल है। अब देखो हमारे ब्रह्मचारी के आश्रम चले जाओ, अब बैठ नहीं सकते एक घंटा। दूर धर्म माने दुख, माने अत्यंत कठिन, धर्म माने धारण करना। बैठ जाओ खटमल काटेगा, चलने चले जाओ सांप काटेगा, है कि नहीं? राह में सर्प आएगा, बेड पे खटमल आएगा, चलो नीचे सो जाओगे चूहा काटेगा। तो खटमल, चूहे, सर्प, उससे बच जाओ तो इंसान काटेगा, नहीं काटता? मच्छर शब्द का अर्थ होता है मत्सरम। मत्सर माने इंसान सोचता है मत्ता सरती, अरे मेरे आगे निकल गया, हम दोनों ही भक्त बने के आए और ये इतना आगे निकल गया, क्यों आगे निकल गया अब देखते हैं, तो वो भी काटेगा। तो दूर धर्म इसको धारण करना भी भारी मुश्किल है। सदोषम, और दोष क्या है? वात पित्त और कफ है, वात पित्त और कफ है। आपने सुना होगा, ये भागवत में पढ़े होंगे, जो बहुत ज्यादा पाप करता है उसको बैतरणी में डाल देते हैं, बिरजा के बैतरणी। वो बैतरणी का वर्णन आता है, क्या पानी उसमें बढ़िया है? ना 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 ना, उसमें क्या है पानी, उसमें मटेरियल क्या है? उसमें सड़ा हुआ खून है, पीव है, और क्या है? श्लेष्मा है, और आंखों से सवेरे सवेरे जो माल निकलता है वो भी है, मल है, मूत्र है, वो बढ़िया बैतरणी बह रहा है, उसी में लेकर के डाल देंगे। मेरे मित्रों बताओ, ये श्लेष्मा कहीं किसी फैक्ट्री में थोड़ी पैदा होता है? इसकी पैदाइश कहां है माताओ, तुम बताओ? एक तो बता दो, इसकी फैक्ट्री कहां है? इसकी फैक्ट्री ये शरीर है, इसमें ये कंठ जो है इतना इतना बढ़िया सुरीला गला है, इसके इसका उत्पाद जो श्लेष्मा है एक कंठ का ही उत्पाद है। कंठे घुर घुरायते, आप पढ़िए, भगवान कपिल सावधान करते हैं। अपने हिंदी में जब भजन सुनोगे, भजनों में कई प्रकार के भजन है, कई रसिया भजन है, कई कुछ, कई जन्म की लीला है। एक प्रकार के भजन को कहते हैं चेतावनी। चेतावनी में क्या है? कपिल भगवान कहते हैं कंठे घुर घुर आयते, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है उसकी श्लेष्मा उसके कंठ को जाम करते हैं, वो सो नहीं पाता, खराटे मारता है, कंठे घुर घुर आयते। किन्नासा इव गुजरम, जो व्यक्ति 100 मीटर के रेस को 10 सेकंड में अतिक्रम करता था, आज उसको एक कदम चलने के लिए लाठी लेकर के चलना पड़ता है। एक बुढ़िया एक मैदान में लाठी लेकर के चल रही थी, कुछ बदमाश लड़के थे, बोले अरे बुढ़िया तेरा क्या खो गया मैदान में, तू तो क्या ढूंढ रही है? बुढ़िया कहती रे रे मूर्ख न जाना सी गत तारुण्य मौक्तिकम, मेरी जवानी रूपी मोती खो गई है, मैं उसको ढूंढ रही। वो एक बार जाता है नहीं आता। तो ये श्लेष्मा कफ है वात है सदोषम, ये शरीर में ही है, ये मल मूत्र के शरीर के साथ हम ही तो जी रहे हैं, इसी वैतरणी में क्या है और नरक को देखना, यही तो नरक है। ये सलाइवा, ये खून, ये पीव, ये श्लेष्मा, ये मांस, ये सारे जो सप्त धातु वाला ये शरीर है। अत्रैव नरकः मातु इति मातु प्रचक्षते, यहां यातना, जो नरक में यातना तुम सुन रहे हो यहां भी वही यातना है। डेली बाथरूम जाना पड़ता है, कोई अच्छी बात थोड़े ही है। घटना क्या है, हम उसको माइंड इसलिए नहीं करते कि घर में एक गधी हमारी है, वो गधा लात रोज मारता है, तो लात खाते खाते आदत पड़ जाती है, फिर उस लात को कोई कीमत नहीं देता, लात खाते हैं रोज रोज। ऐसा ही रोज बाथरूम जाना कोई अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन लोग तो बाथरूम में जाकर अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी लगा हुआ है, कम से कम भारत में तो नहीं है, है भारत ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो इसलिए ज्यादा फोन भी, हाँ देखो सारी चीज है। तो मेरे मित्रों वो सारी चीज यही पे है, इसी शरीर में है, दुर्धर्म सदोषम। और चलो ठीक है थोड़े दिन नरक में जाएंगे, आगे क्या क्या है? बोले कृमि वेट भस्म संज्ञातम। बोले अंतिम गति क्या होगी? बोले कीड़े खा जाएंगे। बिट माने अब पशु खा करके मल के रूप में त्याग देंगे, या तो इसको आग के हवाले कर देंगे, अग्नि इसको जरा डालेगी। हाड़ जरे जैसे सूखे लकड़ी, केस जरे जैसे घास सारे, सोने की सी काया जरी गई, कोई ना आसे आए पासारे। बोले जिस शरीर को रोज रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के साफ करते थे, ओलिव ऑयल जिसको हम चलाते थे, अब वो जल जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। अत्रैव मातु नरक स्वर्ग स्वर्ग, हाँ यो भी नरक स्वर्ग नरक एवं इति मातु हो प्रचक्षते है या यातना भी नारक्या अत्रे अथा यहापि उपलक्षिता मां, यहां भी। तो भगवान हमारे भारतवर्ष के वेरी प्रैक्टिकल, वो कहते हैं चलो तुम हमारी बात को दूर की बात विश्वास करो ना करो, पर यहां तो तुम्हारे सामने हम रख लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि संभावना को बेकार ना बना दे। हमारी बात समझ में आई नहीं आई? आप माथा तो हिला देते हो हमको पता है, लेकिन संभावना को बर्बाद ना करें, इसका उत्तर आप शुभ कृष्ण जी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। कौन दे सकते? यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। संभावना, संभावना माने एक इंसान के शरीर में जो लास्ट संभावना हो सकती है, जो लास्ट अचीवमेंट है। व्यक्ति अचीवमेंट बहुत कुछ कर सकता है, आप इंजीनियर बन सकते हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद के आप पात्र हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, यह भी संभावना है। आप देवता बन सकते हो, आप यहां से योद्धा बनकर के स्वर्गादि राज्यों में जाकर के देवताओं को राज्य आप वापिस दे सकते हो, आप बढ़िया योद्धा बन सकते हो। योद्धा की संभावना है, यंत्री की संभावना है, सेवक की संभावना है, लेकिन चरम और परम संभावना क्या है? चरम और परम संभावना यह है भगवान का दास बन जाना, भगवान का दास बन जाना, भगवान की दासता को प्राप्त कर लेना, यह मनुष्य जीवन की चरम संभावना है। इसलिए भगवान ने इतना जोर दिया है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनमृत्यु यावत निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। उद्धव गीता, आप साथ साथ में कह देता हूं, कल वसंत पंचमी है, वसंत का आगमन होने वाला है, और कल सरस्वती जी का भी आवाहन है। जब प्रथम विद्यारंभ बालक करने जाता है तो सबसे पहले विद्यादात्री माँ सरस्वती का मंत्र उनको सिखाया जाता है, उस मंत्र के साथ फिर बालक विद्यारंभ में प्रवृत्त होता है। तो कल आप सबकी सेवा में ये दास सेवा करने के लिए तैयार है। कल 10 तारीख वसंत पंचमी, कल से 3:30 बजे से 6:30 बजे तक ये समय सीमा है, और 10 दिन के लिए माने वसंत माघी शुक्ला वसंत पंचमी से लेकर माघी पूर्णिमा तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। बिलासपुर के श्री अग्रवाल जी, जिन्होंने पिछले बार भी बड़ी सहायता की थी और बहुत पहले भी ये कथा कराई थी, तो उनका बड़ा सहयोग है, बड़ा आगमन है, बड़ा उत्साह है, तो उनके उत्साह के कारण हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ठाकुर भगवान श्री कृष्ण बलराम की कृपा है, तो कल सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए। और सब्जेक्ट रहेगा एकादश स्कंध, जो भागवत का सार निर्यास है। भागवत एकादश स्कंध में 2-3 संवाद है, इतने महत्वपूर्ण संवाद है, जैसे निमी नव योगेश्वर संवाद भागवत धर्म का है, कृष्ण उद्धव संवाद, एल गीता, भिक्षु गीता। तो 10 दिन में तो ये पूरा स्कंद करना मुश्किल है, फिर भी काफी हद तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं और इस भागवत को आस्वादन करने के लिए ये श्लोक आ गया, इसलिए हमें स्मृति भी आ गई, स्मरण आ गया, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आइएगा 3:30 से 6:30 तक, 6:30 के बाद सबके लिए गर्मा गर्म भव्य महाप्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, आप 3 बजे ना खाओ तब भी चलेगा। हाँ, खाना भी वैसे नहीं चाहिए क्योंकि बाद में जो बढ़िया बढ़िया होगा उसको कौन खाएगा, तो आप सबके लिए भरपूर प्रसाद की व्यवस्था। शुभ कृष्ण जी से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा ये लाइट और माइक की व्यवस्था कर दीजिए, कैमरा की, और मैट तो बिछा हुआ है, ठंडा लगने की कोई सवाल नहीं है। सो ये श्लोक 11वें स्कंद का है। उन्होंने कहा कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहुशम भवान थे, अनेक अनेक जन्मों के बाद ये शरीर मिला है जिसमें चरम और परम संभावना की रूपरेखा बन सकती है और वो सफल हो सकता है, वो है मनुष्य जीवन। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कहा, हमको ये वाला पद, ये वाला जो डायलॉग है बहुत अच्छा लगता है, ना हमको पवित्र बनना है ना हमको पापी बनना है, हमको तो भगवान का भक्त बनना है। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए उस चरम संभावना को ध्यान में रखते हुए हम सब भक्तों को बहुत प्रयास करना चाहिए। श्रमणा भक्त वही कहलाता है जो परिश्रमी होता है, परिश्रम पूर्वक शास्त्र अध्ययन करना, परिश्रम पूर्वक भक्ति करना, परिश्रम पूर्वक भागवत के रस का आस्वादन करना। जीवन में और क्या क्या है, कुंभ मेला में जाना, यही तो अमृत है। अमृत क्या है, अमृत क्या है, वही बात है, किसने स्वर्ग का अमृत देखा, या कोई कहे अमृत स्वर्ग माही, कोई कहता है स्वर्ग में अमृत है, एक संत ने कहा, फिर देवता लोग को पी पी करके क्यों मरते हैं भाई, देवता लोग अमृत पीते हैं फिर भी धरती में खिरखिर जाई, वो फिर वापस आते हैं, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम भीषंती, क्यों आते हैं। इसलिए उस संत ने सारे अमृतों को नकार करके कहा, तब कथामृतम ताप्त जीवनम, भगवान की कथा ही अमृत है, बाकी कोई अमर हुआ या नहीं अमर हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण है मीरा नहीं मरी, प्रत्यक्ष प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु जब भक्त अवतार में आए थे, भगवान है, इस पक्ष को हम नहीं ले रहे हैं, छोड़ दीजिए, कम से कम हाड़मांस के शरीर में जब अवतार हुए वो भी नहीं मरे ना, अदृश्य हुए, मीरा अदृश्य हो गई, तुकाराम जी के लिए विमान आया, देहू गांव वालों ने सबने देखा, सामने सामने विमान आरूढ़ होकर के तुकाराम जी चले गए। भागवत प्रमाण सिद्धांत ये पेश करते हैं, मृत्युर मूर्धने पदम दत्त्वा आरुरोह परासनम, ध्रुव महाराज जी के सामने जब मृत्यु उपस्थित हुई उन्होंने उसके मूर्धा पर उनके मस्तक पर पद रख करके वैकुंठ गए। भाई संसार में कोई देवता मरे ना मरे उससे क्या मतलब हमारा है, सामने तो दिखाई दे रहा है अमृत, उसको नहीं पीने वाला भागा हुआ। इसलिए हम यही भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए, ठाकुर जी हम लोग को खूब प्रेरणा दे, भागवत के कथारस में दिन रात हम लोग का मन, हम लोग की मति, हम लोग की बुद्धि डूबी रहे, इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम।